सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में व्याकरण भाग से हम ह्रस्वों का अध्ययन कर रहे थे। ह्रस्वों के अध्ययन करते हुए हमने अभी तक रौद्र रस तक का अध्ययन कर चुके थे। आइए आज हम उससे आगे जो छठवां रस है हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं, भयानक रस। अगला रस है हमारा भयानक रस, भयप्रद या घटना को देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से जो भय उत्पन्न होता है, अर्थात हमारे अंतःकरण में किसी ऐसी घटना को देखकर जिससे हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाए, यही भय स्थायी भाव। और ये भय क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। यही भय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करके परिपुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो भयानक रस कहलाता है। जैसे एक ओज एक ओर अजगर ही लखी और एक ओर मिगराए, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक पथिक है वो जा रहा है, एक पथिक है वो रास्ते में जा रहा है और उसको क्या मिल गया? एक तरफ उसको अजगर मिल गया और दूसरी तरफ जब दूसरी तरफ भागा अजगर को दौड़कर तो दूसरी तरफ सिंह मिल गया। दोनों को देखकर वो भय के मारे क्या हो गया? मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, और दोनों को देखकर वो बटोही बहुत विचलित होकर बीच में ही गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। यहां पर इस काव्य पंक्ति में अजगर और सिंह की भयावह जो आकृतियां हैं और उनकी जो चेष्टाएं हैं वो दीपन विभाव है। यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव है, यात्री जो है पथिक जो है वो उसका आश्रय है, अजगर और सिंह जो है वो आलंबन है, वही मेन पात्र है अजगर और सिंह, और यात्री का है आश्रय है। अजगर और सिंह की भयावह जो भयानक जो आकृतियां हैं वे उद्दीपन विभाव है, उसको डर और उद्दीप्त कर रही हैं। यात्री को मूर्छा आना अनुभव, आवेग निर्वेद दैन्य शंका व्याधि त्रास अपस्मार आदि, ये सारे क्या है? ये सारे संचारी भाव हैं। इसलिए इन विभाव अनुभाव और संचारी भावों के मिलकर यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराए, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अगला रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जैसे अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, जो सहृदयी लोग हैं कई सारे विद्वान इसको कहते हैं कि इसको रसों के अंतर्गत गिनती नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं, ये भी हमारे शरीर हमारे हृदय की एक मनोदशा को दिखाता है, हमारे अंतःकरण के जो हमारे अंतःकरण जो हमें फील करता है महसूस करता है इसको ये भी बताता है, अतः इसलिए इसको भी रस के अंतर्गत ही माना जाता है। फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तथा वस्तुएं कम नहीं है। कई बार हम देखते हैं चलते फिरते अगल बगल देखते हैं कि मक्खियां भिनक रही हैं और बदबू आ रही है, कोई जानवर मर गया उसकी स्मेल हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जिसको देखकर हम तरह तरह का अपना चेहरा बनाते हैं, हमारे चेहरों के भावों विकृत होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति जो कहलाती है वो क्या कहलाता है? वो जुगुप्सा, जिसको देखकर घृणा उत्पन्न हो, जी मचलाए जिसको देखकर, वहां पर रुकना अच्छा न लगे, ऐसी स्थिति में बीभत्स रस की जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब संयोग होता है विभाव अनुभाव और संचारी भावों के साथ, तो वो जब आस्वादन योग्य हो जाता है तो वहां पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती। जैसे सिर पर बैठे उकाग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यारे अति ही आनंद उरधारत, गीर जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिनी काट काट के खात विदारत। जैसे एक मरा हुआ जानवर है उस मरे हुए जानवर सड़क के किनारे फेंक दिए जाते हैं। उस मरे हुए जानवर में कौवा उसकी आंख को निकाल निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभे सियार अति आनंद उरधारत। और जो सियार होता है, जो श्रृगाल होता है, उसकी जीव को खींच खींचकर आनंद से उसको उघाड़ रहा होता है, खींच रहा होता है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उपारत। और जो गिद्ध जो होते हैं वो उसकी जांघों को खोद खोद कर मांस निकाल रहे होते हैं। और स्वान अंगुरी निकाट निकाट कई खात विदारत। और जो कुत्ते होते हैं वो उस मरे हुए जानवर के अंगुलियों को काट काट के विदीर्ण कर रहा होता है, छोटी छोटी कर रहा होता है। इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर किसके मन में घृणा उत्पन्न नहीं होगी? यदि आप ऐसी सीन को कहीं पर देख लें तो निश्चित है आपका मुख म्लान हो जाएगा और आपको घृणा उत्पन्न हो जाएगी ऐसी जगह पर जाने से। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न जिगुप्सा या घृणा स्थायी भाव है। दर्शक हरिश्चंद्र आश्रय हैं, जो देख रहे हैं इस सीन को वो क्या है, आश्रय है। मुंदे मांस और शमशान का दृश्य आलम्बन है। गीद स्यार कुत्ता आदि मांस नोचना खाना उद्दीपन विभाव है। दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना ये क्या है, अनुभव है। मोह ग्लानी आवेग व्याधि ये सारे क्या है, संचारी भाव है। अतः यहाँ पर इन विभाव अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होता है, इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अगला रस है अद्भुत रस। इस शब्द से ही आपको समझ में आना चाहिए, अद्भुत कहते हैं आश्चर्य। किसी चीज को देखकर जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, विस्मित हो जाना। ये विस्मय नामक स्थायी भाव हमारे अंतःकरण में पूर्व में ही विद्यमान रहता है। जब हम किसी चीज को, ऐसी अलौकिक चीज को देखकर जब हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। यही विस्मय जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होकर परिपुष्ट हो जाता है तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर कहते हैं आकाश में कुंतल जाल देख, अथवा कुंतल कहते हैं बाणों का जाला देखकर, पद के नीचे पाताल देख, और अपने पैरों के नीचे पाताल देखकर, मुट्ठी में तीनों काल देख, और अपनी मुट्ठी में तीनों को भूत भविष्य और वर्तमान काल को देखकर, मेरा स्वरूप विकराल देख, और स्वरूप को विकराल देखकर, सब जन्म मंझी में से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जब यशोदा जी श्री कृष्ण कि इस विराट स्वरूप को उनके जब मुंह खोलने के लिए कहती हैं, यशोदा जी अपना मुंह खोलो तो नहीं मिट्टी खाइए, क्या खाइए। जब श्री कृष्ण जी अपना मुंह खोलते हैं तब यशोदा जी देख रहे हैं कि अंबर उनके मुंह के अंदर पूरा विराट संसार का दृश्य अवलोकन कर रही हैं माता यशोदा, और देख रही हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, अर्थात आकाश में बाणों का जाला सा देखकर, और पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मंझी में पाते हैं, सभी लोग जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, मेरे में ही समा जाते हैं और मेरे से ही वापस लौट आते हैं। यह स्थायी भाव विस्मय, ईश्वर का विराट स्वरूप आलंबन है, विभाव है। विराट के अद्भुत क्रियाकलाप उद्दीपन है, आंखें फाड़कर देखना, स्तब्ध आवाक रह जाना, अनुभव और भ्रम और सुख की चिंता त्रास आदि सारे संचारी भाव है। अतः यहाँ पर कौन सा रस की उत्पत्ति होगी, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला देखिए शांत रस। शांत रस शब्द से आपको महसूस हो रहा होगा इसमें शांत भाव के दर्शन हो, क्योंकि ये शांत रस मन को बिल्कुल अस्थिर कर देता है। इसलिए कई सारे नाट्य शास्त्रियों ने, कई सारे काव्य शास्त्रियों ने इसको रस के अंतर्गत नहीं माना है, लेकिन हिंदी में इसको रस के अंतर्गत मानना है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये संसार नश्वर है, आज है मैं तो कल वो नष्ट हो जाएगा, कल वो है तो परसों वो नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार से विराग उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न, परिणामता मनुष्य भौतिक तथा लौकिक चीजों के प्रति क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसे किसी चीज से लगाव नहीं रह जाता, इसी को निर्वेद कहते हैं। मतलब भौतिक एवं लौकिक चीजों के प्रति उसको क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, लगाव न रह जाए, उसके प्रति उसकी पाने की इच्छा न रह जाए। एक प्रकार सन्यासी का व्रत को धारण कर लेना वो क्या कहलाएगा, निर्वेद कहलाएगा, जो विभाव अनुभव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर शांत रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण देखिए, जिस सुत वनितादि जान स्वारथ रत ना करूं नेहि सबहीं ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे अबहीं ते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्यागू दुर्दशा जीते, बुझई ना काम अग्नि तुलसी कहो विषय भोग बहु घीते। तो एक सन्यासी व्रत एक इस माया मोह से विरत, माया मोह से संसार के भौतिक चीजों से उदासीन हुआ एक सन्यासी कह रहे हैं, सुत वनिता जान स्वारथ न करते ही नेह सुबही थे। जितने भी पुत्र पत्नी इत्यादि हैं ये सब स्वार्थ युक्त हैं, ये आपका साथ नहीं देंगे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ना तजही अबे ही। ठीक है, अंत में ये सब तुझे छोड़ देंगे, तू ना तजही अबे ही ते। यदि तू इन्हें अभी नहीं छोड़ेगा तो अंत में ये सब लोग स्वार्थी हैं, ये सब लोग अंत में जब तेरा शरीर नाश हो जाएगा तब ये तुझे छोड़ देंगे, इसलिए अभी से तू इन्हें छोड़ दे ताकि बाद में छोड़ने पर तुझे दुख ना महसूस हो। अब नाथ अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्दशा जीते, हे नाथ अब अनाथ से ही आप अनुराग कर लीजिए, प्यार कर लीजिए, क्योंकि वही आपका भला करेंगे। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु जीते, क्योंकि जो भोग हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी आपकी कम नहीं होंगी, ये आग ये जरा बढ़ती ही जाती है, इसलिए इन भोगों को तो अभी छोड़ दे, जो लिप्साएं हैं इच्छाएं इनको तू अभी त्याज दे। यहाँ पर स्थाई भाव निर्वेद है, इन पंक्तियों में स्थाई भाव है निर्वेद, आश्रय संबोधित संसारिक जन आलंबन, सुत वनिता आदि अनुभव, सुत वनिता आदि को छोड़ने का कहना संचारी भाव है, द्वितीय मति विमर्श आदि है, ये सारे संचारी भाव है, अतः यहाँ शांत रस है। शास्त्रीय दृष्टि से नौ ही रस माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर दो नए रसों को मान्यता दी है, वात्सल्य और भक्ति रस। इनमें से अब हम अंतिम रस वात्सल्य रस के बारे में पढ़ते हैं। वात्सल्य रस का संबंध छोटे छोटे बालिकाओं के बालक बालिकाओं के प्रति जो माता पिता या बड़ों का जो प्रेम होता है वो श्रृंगार रस से बिल्कुल अलग होता है। छोटे छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उससे वात्सल्य रस कहते हैं। सगे संबंधियों का प्रेम ममता के जो भाव होते हैं बालक बालिकाओं के प्रति उसे वात्सल्य रस कहते हैं। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बाल कांड में वात्सल्य रस का सुंदर व्यंजना दृष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है या स्नेह। उदाहरण देखिए, किलकत कान कान्हा जी घुट रुवनी आवत, श्री कृष्ण जी के बाल लीला की चर्चा करते हुए सूरदास जी लिखते हैं, किलकत कान घुट रुवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगुन बिंब पकड़ बे धावत, कबहु निरह की हरि आप छाह को करसो पकारन चाहत पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वै दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। श्री कृष्ण जी के बचपन के लीलाओं को देखते हुए तुलसीदास जी इस चीज को लिखते हैं। यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है, आलंबन कृष्ण की बाल लीला सुलभ चेष्टा है, उद्दीपन किलकना बिंब को फड़कना पकड़ना, बिंब अनुभव रोमांचित हो जाना, मुख चूमना
अर्थात माता पिता जब रोमांचित हो जाते हैं, उसका मुख चूम लेते हैं, उसकी हरकतों को देखकर, लीलाओं को देखकर, संचारी भाव है हर्ष से गर्व चपलता उत्सुकता आदि। अतः इन सब विभाव अनुभव और संचारी भावों को मिलाकर यहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर छोटे बच्चों में वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने अभी रसों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आप स्व अध्ययन करके अधिक जानकारी स्वयं ग्रहण करें। धन्यवाद।